అయోధ్యాపురి ధామకి, సీతారాం లక్ష్మణ హనుమానికి, నవద్వీప్ మాయాపురి ధామకి, గౌరాంగ నితాయ మహాప్రభుకి, యుగ్ధర్మరి నామ సంకీర్తనకి, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివిడ్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివిడ్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌరాంగ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో పంకజనాభాయ, నమో పంకజమాలినే, నమో పంకజనేత్రాయ, నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.
यही करता हूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ.
कि जब तक वरिष्ठ भक्त लोग आशीर्वाद देते नहीं हैं और वैष्णवगण आशीर्वाद देते नहीं हैं, भागवतम हम कभी समझ नहीं सकते। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो भगवत गीता और भागवतम, ये दिव्य रहस्य है और ये कौन समझ सकता है? जो मेरा भक्त है और जो मेरा मित्र है वही इस वस्तु को समझ सकता है। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली जीव है, आप यहां पे जितने भी जीव बैठे हैं बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद की परंपरा में आ रहे हैं। और ये जो सबसे मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमारा है, भागवतम रीडिंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है पूरे दिन का। जो हमारा सबसे मेन काम अगर कहा जाएगा तो ये है, क्योंकि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता बीज जो हमें मिला है बहुत जन्मों के बाद, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये श्रवण कीर्तन जल से ही ये हमारा भक्ति लता बीज का उदय हो सकता है। तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा भागवतम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं हमारा काम करता है उस भक्ति लता बीज को बढ़ाने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक बात और बताते हैं कि जब आप कभी भी कोई भी वृक्ष उगाते हो खेती में, तो जल डालते हो तो जल के साथ साथ में घास फूस भी उग जाती है, और जब तक आप उस घास फूस को निकालोगे नहीं तब तक वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। उसी तरह हम भागवत श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेकिन ये छह वस्तु बोला गया है, ये कुटी नाटी, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, अनाचार, निषेध आचार, ये सब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये सब चीज है, ये हमारी अनवांटेड वीड्स है, और जब तक उसको निकालेगा नहीं, हम लोग निकालेंगे नहीं, तब तक इसमें रस नहीं आएगा। जैसे प्रभु जी अभी बता दिए कि आपको जो श्लोक दिया गया था वो ऑलरेडी कल हो चुका है, और फिर भी मैं बोला चलो उसी श्लोक से और भी आगे पढ़ेंगे करेंगे। देखो ये कृष्ण है, भागवत कृष्ण है, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि भगवान मत्स्य रूप में, जब मच्छी के रूप में आते तो मत्स्य ले लेते हैं, ऋषि के रूप में आते हैं तो नर नारायण बन जाते हैं, और भगवान बाद में ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो परशुराम बन जाते हैं, लेकिन जब भगवान पुस्तक के रूप में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम बन जाते हैं। तो एक एक शब्द, एक एक श्लोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण रस है। इसलिए चलिए अपन आज लेते हैं, त्रयी त्रिशत शतम हि अश्वान बद्ध्वा विस्मया पायन नृपाम दोष्यमन्त्यत्यगात मायाम देवानां गुरुम आययो। बोलिए कोई। त्रय त्रिशतम शत्वम अश्वान बद्वा दोष्यमन्ति अत्यगान मायां देवानां गुरुम आययो। त्रिशतम शतम हि अश्वान
देवानाम गुरु माययो। माता जी ठीक है, त्रयी तीन त्रिशाता तीस शतमा सौ ही निस्संदेह अश्वाना घोड़े बद्वा यज्ञ में बंदी करके विस्मा पायना आश्चर्यचकित करते हुए नृपाना सारे राजाओं को दुष्यमंती महाराज दुष्यंत के पुत्र अत्यगात बाजी मार ले गए मायाम भौतिक ऐश्वर्य को देवानाम देवताओं का गुरुम गुरु आययो प्राप्त किया। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने अनेक यज्ञों के लिए 3,300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया क्योंकि उसे परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। तात्पर्य, जिसने भगवान के चरणामृत प्राप्त हो जाते हैं वह स्वर्गलोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे निकल जाता है। यम लग्भा चा परम लाभम मन्यन्ते नाधिकतत, भगवान के चरणों क्रमों को प्राप्त जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री युक्त पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांच श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो हम और भी आगे एक दो श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि कल ये श्लोक हो गया है। तो आगे में श्लोक में बता दे, जब महाराज भरत ने मशान नामक यज्ञ संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14,00,000 श्रेष्ठ हाथी दिए जिनके दांत सफेद थे और शरीर काले थे, जो सुनहरे आभूषणों से ढके हुए थे। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य नहीं दिए, दो तीन वो भी पढ़ लेते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता क्योंकि अपने बाहु से कोई स्वर्ग कैसे छू सकता है, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि न तो भूतकाल में ऐसा कार्य कर सका है न भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। जब महाराज भरत ने दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरात हुंद यवन पौंड्रक कंक कश शख तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोध राजाओं को परास्त करके मार डाला। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधो लोक में शरण ले रखी थी और सारे देवताओं की स्त्रियों एवं कन्याओं को भी वे ले आए थे, किंतु भरत राजा ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगी समेत असुरों को कुचलकर छुड़ाकर उन्होंने देवताओं को वापस कर दिया। अभी ये जो अध्याय चल रहा है 9वां अध्याय, भागवतम में 10 विषय वस्तु है। दूसरे अध्याय का ये श्लोक है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतर ईश अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। जैसे भागवत गीता में 5 विषय वस्तु है, भागवतम में 10 विषय वस्तु है। 9वें अध्याय, ये 9वें स्कंद तक आते आते जैसे कहते 18,000 श्लोक है भागवतम में। 9वें अध्याय तक आते आते आधे श्लोक यानी कि 9,000 श्लोक हो चुके हैं, ये अभी आते जाएंगे, और कम से कम 3.5 दिन चले गए हैं परीक्षित महाराज के। और बिना प्यास बिना भूख सतत ये श्रवण हो रहा है। परीक्षित महाराज ये यहां पे आते आते हम देखेंगे, अभी बहुत सारे ये जो विषय वस्तु आती है ये मनवंतर के कैसे कैसे मनु हुए और उनके वंशज कैसे हुए उनकी कथा के अंतर्गत यह आता है। और इस अध्याय के जो पहला श्लोक है जहां पे परीक्षित महाराज को बता रहे कि ये जो आपके वंशज है वो राज ऋषि थे और ब्राह्मण कुल के थे, तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी महाराज ये सभी का वर्णन दे रहे हैं। और यहां पे हम आगे भी सुनेंगे कि ऐसे ऐसे भक्तों के नाम, ऐसे ऐसे राज ऋषि, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों के नाम जो हमने कभी सुने नहीं। लेकिन यहां पे जो विषय वस्तु, यहां पे अभी जो गुणगान हो रहा है वो भरत महाराज का हो रहा है। तो हमें क्या लेना देना है आज क्लास में, हमें क्या लेना देना है भरत महाराज के गुणगान से? प्रभुपाद के हर तात्पर्य आप जब भी देखेंगे वो हर तात्पर्य को भक्ति के ओर लेके जाते हैं, कि कैसे ये तात्पर्य के द्वारा आपकी जो भक्ति लता बीज का सिंचन होवे। तो यहां पे जो यहां पे बताया गया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि 3300 घोड़े बांध के रखे। फिर आगे भी बताया है कि उन्होंने 1,400,000 हाथी जो स्वर्ण से मंडित है उसको दान दिए। फिर यहां पे इसके पहले के श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने यज्ञ किए, अपना पूरा का पूरा जीवन उन्होंने यज्ञ दान और तप में दे दिया। भागवत गीता एक लॉ बुक है और भागवतम में लॉ जर्नल है। लॉ बुक इसे कहते हैं कि यह कायदा है, और यह कायदा कहां अप्लाई होता है वो लॉ जर्नल में मिलता है कि दो पार्टी के बीच में ये लड़ाई हुई और यह कायदा लगा है। तो भागवतम केस हिस्ट्री है कि कौन से केस में यह कानून लागू हुआ। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान भागवत गीता में स्पष्ट बताए कि हर जीव को 3 कार्य करना अवश्य है, कुछ भी हो जावे, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी महान है, उसे यज्ञ दान और तप कभी भी छोड़ना नहीं है। और उसी केस हिस्ट्री से सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि देखिए ये क्या है, इन्होंने पहले यज्ञ किया और अभी यज्ञ के बाद में क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। और उन्होंने ये कैसे संभव है ये भी बताया है कि उन्होंने वैष्णव के आशीर्वाद, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उन्होंने ये सब चमत्कार कर रहे थे। भगवान बताते हैं कि मैं बल हूं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द हखे पौरुषम निषु पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजह तेजस्विनाम बलम बलवताम चाहम। भगवान बोलता है कि बलो मैं बल हूं। तो यहां पर जो बल बताया गया है ये भगवान द्वारा आविश्य बल है। और ये आविष्य बल क्यों हुआ, क्योंकि भगवान
उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मणों की सेवा अच्छा कर रहा है, वैष्णवों की सेवा अच्छा कर रहा है, और ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रताप से इतना बल था। हमें ख्याल आता है कि अर्जुन जब युद्ध में लड़ रहा था तो बहुत आश्चर्य कार्य कर रहा था। क्यों? भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा के कारण। लेकिन वही अर्जुन जब यह लास्ट की जो कथा आती है कि भगवान जब चले गए थे तो अपने गांडीव से भी जितने भी रक्षक है ये द्वारका वासियों की, उनकी रक्षा भील लोग से भी नहीं कर पाए। तो भगवान जब आवेश करते हैं, शक्ति द्वारा प्रदत्त करते, तब आप में शक्ति आती है और ऐसे आश्चर्य आश्चर्य कार्य कर सकते हैं, हम दान दे सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि जब तक हमारे पर वैष्णवों की कृपा नहीं है, जब तक हम ब्राह्मणों की आशीर्वाद नहीं लेंगे, वैष्णवों का आशीर्वाद लेंगे नहीं, तब भी हमारे में भी बल आएगा नहीं। और ये प्रसंग से हम सीखते हैं कि अगर जीवन में कोई आपको कार्य करना है तो जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी आप वो कार्य संभव नहीं है, मगर अगर वैष्णव की कृपा हो तो आश्चर्यमय कार्य कर सकते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी महाराज और परीक्षित महाराज यहां पे कथा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उनके भी कार्य इतने आश्चर्यमय थे। यहां पे उनको बता रहे हैं कि ये आपके वंशज है, परीक्षित महाराज को आपके जीवन में भी एक प्रसंग आया कि आप जंगल में गए और जंगल में आप क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, और शिकार के टाइम पे आपको प्यास लगी और उस प्यास के कारण आपने क्या कर दिया, ऋषि के आश्रम में गए, मान नहीं मिला और वो प्यास से विफल होके आपने सांप डाल दिया और आपको श्राप मिला और आप यहां बैठे हो। तो उन्होंने बोला कि इतिहास पहले भी ऐसा हो चुका है आपके ही वंशज में, और वो कहां हुआ, कि दुष्मंत का, वो भी बहुत अच्छे राजा थे, राज ऋषि थे वो, और कभी उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो कभी काम के वशीभूत हो जावे, लेकिन वो भी जंगल गए और क्या हुआ, वो भी शकुंतला की तरह आकर्षित हो गए और उन्होंने उनके ये उनका जो वीर्य कहा जाता था अमोघ वीर्य, उनका कभी भी वीर्य स्खलित नहीं होता था, मगर उस प्रसंग को देखो कि भगवान की योजना थी वो कि कैसे वो वहां पे शकुंतला से हुआ और भरत महाराज का उनके गर्भ में आना हुआ। और कहते हैं कि भरत महाराज बचपन में ही ऐसे खेलते थे जैसे शेर के साथ खेलते थे, और जब शकुंतला माता गई लेके किनके पास, दुष्यंत महाराज के पास, तो उन्होंने स्वीकार करना मना कर दिया और तब आकाशवाणी हुई और कहा कि ये आपके ही पुत्र है। तो इस प्रसंग से हमें क्या समझने को मिलता है कि भगवान की ये योजना थी कि भरत महाराज को लाना था और उनको ये सेवा देनी थी। तो उसी तरह हमें यह समझना है कि कुछ कुछ भगवान की योजना रहती है और उस भगवान की योजना के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, और जब भगवान की योजना रहती है तो हमारी सब योजना फेल हो जाती है, हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो यहां पे ये दो प्रसंग हमें सीखने को मिलता है। दूसरा कि ये जो विस्मयमय कार्य भक्त हमेशा कर सकता है, लेकिन कृपा होनी चाहिए, भक्तों की कृपा, वैष्णवों की कृपा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज गर्भ में थे, कितने साल, 16 साल थे, ये भी एक विस्मय कार्य है, लेकिन क्यों थे, क्योंकि वो राधा रानी के तोते थे। परीक्षित महाराज ने अपने पूरे जीवन में एक विस्मय कार्य देखा है, उन्होंने गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन किया और इसीलिए उनका नाम भी पड़ा परीक्षित, क्योंकि जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा कि वो कहां है कि जिसको मैंने देखा था गर्भ के अंदर। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, ये भी एक आश्चर्य की बात है, एक विस्मय की बात है। तो भगवान की जब शक्ति देते हैं, बल देते, तो विस्मयमय कार्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। 33 घोड़े, मैं कभी कभी विचार करता हूं, उन्होंने 3300 घोड़े या हाथी को कंट्रोल किया दिया, हमारे 5 घोड़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे 5 घोड़े कौन से हैं? भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है, एक रथ है, और रथ की 5 इंद्रियां हैं। सामान्य जीव इन इंद्रियों को भी कंट्रोल कर नहीं सकता, मगर अगर भगवान की शरण है, वैष्णव की कृपा है, प्रभुपाद की परंपरा की, तो आप इन 5ों को, ये 5ों घोड़ों को भी आप जीत सकते हो। तो यहां पे जो हमें वास्तव में समझना है, एक ही शब्द हम ले, आश्चर्य कार्य। जीवन में आश्चर्य, ये जो इस्कॉन है ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। जितने भी संस्था है बाहर, वो जो मेन आदमी जो जाता है ना, उसके जाने के बाद वो संस्था चली जाती, रुकती नहीं है। मगर हम देखते हैं कि कैसे इस्कॉन प्रभुपाद जब थे तो 108 मंदिर, और प्रभुपाद जाने के बाद ये ज्यादा फल फूल रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्ति इसमें है, वैष्णव की कृपा इसमें है। तो आज का जो विषय वस्तु है, वैष्णव कृपा और भगवान की कृपा से आश्चर्य वस्तु हो सकता है। हनुमान जी, हम हनुमान जी का उदाहरण देते, पहाड़ लेके आए, लंका पार कर लिए, कैसे संभव था ये? क्योंकि उनके जीवन में खाली 2 ही कार्य है, सतत हरि नाम। क्या लेते हो? सतत हरि नाम, दूसरा कृष्ण राम सेवा, तीसरा और कोई कार्य नहीं। और हम में भी अगर यही कार्य रहेगा, सतत हरि नाम और कृष्ण सेवा, तो हम भी आश्चर्यमय कार्य कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये हमारा जो कार्य है, ये हम लोग सब उनके एक सैनिक है। आप सब जितने भी जो जीव है, वो बहुत भाग्यशाली जीव है जिनको कुछ मिशन मिला है, जिनका कुछ कार्य करना है, और हम सब माया से युद्ध कर रहे हैं। कोई इजी नहीं, दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्तया माममेव ये प्रपद्यंती माया मेताम तरंती दे। ये जो माया है इसको पार करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान बता दे माम एव ये प्रपद्यंते, जो निश्चय ही मेरी शरण लेता है उसको ये पार कर सकता है। प्रभुपाद ने जो चमत्कार किया, विस्मय कार्य, वो कम है क्या? सबसे पहला जो आंदोलन अगर हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने चालू किया, अमेरिका में किसी ने कोई झुंड में निकल के हरिनाम देखा नहीं था, लेकिन कैसे किया? ये भगवान और वैष्णव की कृपा थी कि ये आश्चर्य कार्य वहां हो गया। आज भी आज लोगों को बोलो सामान्य कीर्तन करने जाना है गार्डन में, तो विचार करते अमेरिका में जिसने कभी सुना नहीं, वहां भी प्रभुपाद ने यह काम किया। और प्रभुपाद की किताबों ने जितना आश्चर्य और विस्मय कार्य किया उसकी तो गणना ही नहीं। कितने जीवन परिवर्तन हो गया। एक छोटा वो विस्मय का और आश्चर्य का बताता हूं कि कैसे प्रभुपाद जब वैष्णव और भगवान की कृपा होती तो हर वस्तु में परिवर्तन आ जाता। एक भक्त था जो चोर था, रशिया की चोर, हकीकत स्टोरी है ये। और वो रात को चोरी करने जाता था, लेकिन भूल से एक बार भक्त के घर में घुस गया और भक्त के घर में उसे कुछ मिला नहीं। तो वो जब बाहर आ रहा था तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसके घर में घुसा और कुछ लेके निकलू नहीं। और वो उड़ गया भक्त, तो जाते जाते उसको टेबल पे जो मिला उसको उठा के निकल गया। तो उसने ले लिए भागवत गीता, हाथ में क्या आ गई उसको, और देख लिया अरे तो भागवत, और उसमें देखा कि कुछ लड़ाई बड़ाई का कुछ काम है, तो बोला कुछ मेरे चोरी लायक क्या कुछ काम इसमें मिल जाएगा कि मैं चोरी में कैसे अच्छे काम करूं। और वो अभी उसको क्या करने लग गया, पढ़ने लग गया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा है वो किताब, वो उसका रात का जो जाने का काम है एक दिन छोड़ के एक दिन जा रहा है, और वो पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है, और उसका मतलब उसका ज्ञान हो रहा है, समझ में आ रहा है, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके जाने लग गया। तो उसकी पत्नी पूछ रही है, भाई साहब आजकल काम धंधे पे नहीं जा रहे हो? तो बोले कि भाई साहब ये ठीक नहीं है। तो उनका जो ग्रुप का जो लीडर था, उनका ससुर, वो बड़ा गुंडा था रशिया में, उनको जब पिता मालूम पड़ा कि हमारा ये जमाए काम धंधे पे अभी जाना कम कर दिया, तो उसको बुलाया और उसको पूछा कि भाई साहब आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोलते ये सब गलत बात है, हमको अच्छा नहीं है, भागवत गीता में लिखा है ये सब ठीक नहीं है। और ये थोड़े 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 करके उसने पूरा का पूरा चैंटिंग चालू कर दिया और नाम जप करना लग गया, और उसने पूरा वो काम छोड़ दिया। भविष्य आगे चल के वो मंदिर में ज्वाइंट हो गया, और मंदिर में ज्वाइंट होके बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। क्या बना वो? और वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो उसी घर में जाता था जो उसको पहले का आइडिया है ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो पहले का पास्ट एक्सपीरियंस था उसका, उसको मालूम पड़ जाता था एक घर के अंदर से पैसा मिलेगा कि नहीं। तो उसने वो कला यूज की और वो भागवत गीता और भागवतम देता था। ये आश्चर्य नहीं तो चमत्कार नहीं तो और क्या है? प्रभुपाद की किताबें आज भी हमारे जीवन में चमत्कार कर रही है, क्योंकि गुरु वैष्णव परंपरा की कृपा है। तो ये जो इतिहास हमें देखने को मिलता है पीछे, ये हमें प्रूफ करता है कि यज्ञ दान तप करने से भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन भगवान तीन वस्तु और बताते हैं, बोलते हैं काम क्रोध और लोभ जहां भी आएंगे वहां आपकी अधोगति अधोगति होगी। तो ये शास्त्र के द्वारा ये जितने भी हमें उदाहरण मिल रहे हैं, ये हमें हमारे आज के जीवन में उसे समझने के लिए है कि हम जो आज कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहे इसके पहले के तात्पर्य में बताया कि वो यज्ञ कर रहा है, लेकिन आज के प्रभुपाद बता दे कि आज का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। आज के कलयुग का युग है हरिनाम संकीर्तन, और इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और ये यज्ञ के द्वारा हम अपना भी उद्धार कर सकेंगे और जीवों का उद्धार कर सकेंगे, तब जाके हमारा जीवन सार्थक होगा। ये प्रभुपाद की कृपा है कि हम इसको हमको चूज किया गया है कि भाई आप जाओ बाहर जाओ प्रचार करो और जीवन बदली करो, हरिनाम दो पुस्तक दो प्रसाद वितरण करो, अपना भी उद्धार करो जीवों का भी उद्धार करो। ये सब शास्त्र से इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा पालन किया। भरत महाराज ने ऐसे ऐसे कार्य किए, बोलते पहले भी नहीं होगा भविष्य। ये क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति की कृपा, भगवान की कृपा और वैष्णव की कृपा। एक और उदाहरण बताता हूं भगवान प्रभुपाद की, ये जो विस्मयमय कार्य के, एक बार स्पेन में एक भारतीय गया, वो भी गुजराती था बेचारा। गुजराती जब जाएगा तो काम धंधे का ही सोचेगा, वो क्या देखेगा पैसा कैसा मिलेगा, बिजनेस करने का सोचेगा। लेकिन वो उधर गया तब उसने देखा कि बिना स्पेनिश सीखे कभी काम होने वाला, और उसको स्पेनिश आता नहीं है। तो बोलते अभी सीखे कहां स्पेनिश, सस्ते में सीखना है और अच्छे में सीखना है। और उस टाइम दिसंबर का महीना था, तो वहां पे स्पेनिश भी था और इंग्लिश भी था और हिंदी भी था। तो वहां वो पहुंचा, तो भाई साहब को पूछा, वो बोले कि भाई ये ले लो ये ले लो ये ले लो। तो बोलता है ये इंग्लिश और ये स्पेनिश में सेम है क्या सब? बोला हाँ है। बोलता है ये हिंदी में भी सेम है? बोला हाँ है। बोलता है इससे मैं स्पेनिश सीख सकता हूं क्या? क्या बोला? वो भक्त बोला अवश्य आप ले लो, आपको पूरा स्पेनिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो वो स्पेनिश सीखने के चक्कर में उसने तीन भागवत ये कृष्ण बुक ले ली, और वो स्पेनिश सीखते 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 वो कृष्ण की लीला पढ़ते 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 उसका जीवन परिवर्तन हो गया, और आज वो भक्ति चारु महाराज का शिष्य है वहां पे। तो ये विस्मय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आश्चर्य हो रहा है ये। तो आज भी ये जो शक्ति, ऐसा नहीं है कि वहां आज भी वो शक्ति है। आप भी विस्मयमय कार्य कर सकते हो, आप भी आश्चर्यमय कार्य कर सकते हो, खाली हमें गुरु परंपरा और भगवान के चरणों में पकड़ के रखना है। सबसे बड़ा दान ये, अगर हाथियों का दान दे रहे थे उस समय, आज हम भगवद गीता का दान दे रहे, भगवान का ज्ञान का दान दे रहे, ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये दान के द्वारा आप उस जीव का उद्धार कर रहे हो, आप उस बीज को डाल रहे हो। जैसे अभी मैं परसों ही मिल रहा था, ये हमारी जो बुक संकीर्तन पार्टी है वो आई बाहर से, तो बेचारा बता रहा था मुझे कि कैसे कैसे चमत्कार हमको होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये तो एक बार वो भक्त कोई ईस्ट में इधर गए थे अपना रेलवे स्टेशन में, तो वो बोल रहा था रेलवे स्टेशन का, वो बड़ा ऑफिसर था, उनको परमिशन चाहिए थी, तो बोल रहे कि देखो देखो मेरा ये सब बुक है हमारे पास में। तो बोलते कैसे आपके, हम बोलते हमारा, बोलते हम एक बार जू में आए बोलते, और जू में हमारे को शादी करनी थी, तो शादी के चक्कर में हम हॉल लेने आए, और हॉल में हमको लाइफ मेंबर बना दिया। क्या बना दिया? तो लाइफ मेंबर बनाने के चक्कर में आपके पूरे बुक आ गए हमारे घर में। बोलते हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चे लोग पढ़ना चालू कर दी हमारे, और उसका जीवन परिवर्तन हो रहा है, और मेरा बच्चा अभी ठीक है, तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो परमिशन चाहिए हम दे देंगे। तो कहां प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद की ये चलती है, हमें कभी भी कुछ मालूम नहीं। भगवान ने अपने अनुसार आगे कार्य करके रखा हुआ है। हम ये शास्त्र, ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारा भी कुछ ना कुछ कार्य है, और हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान की भक्ति के ऊपर, भगवान वैष्णव की कृपा के ऊपर, तो उस कार्य में हम अवश्य सक्सेसफुल हो गए। नहीं तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं आए। और जैसे हम बताए कि भक्ति के अंदर ये छह जो वस्तु है, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, निषेध आचार, इससे बचना है। अति आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम षड्भिर् भक्ति विनश्यति। ये छह वस्तु हमारी भक्ति को नाश करती है, लेकिन छह वस्तु हमारी भक्ति और प्रेम को बढ़ाती है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याम पुच्छति भुंजते भोज्यते चेव षड विधि प्रीति लक्षणम। हमें भक्तों के बीच में ददाति प्रतिग्रहणाति करना है, वैष्णवों के बीच में ये करना है, तब जाके हमें वैष्णव कृपा मिलेगी, भक्त कृपा मिलेगी, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। ये छह वस्तु ददाति प्रतिग्रह, लेना है देना है। गुह्यम आख्याम पृच्छति, हमें हमारी वस्तुओं को बोलना है, एक दूसरे से बोलना है, वरिष्ठों से सलाह लेना है, जो हमसे निम्न है उस पर दया दिखानी है, हमसे समान है उस पर प्रेम से प्रेममय व्यवहार रखना है, और हमसे वरिष्ठ है उनसे हमेशा उनका दोष नहीं देखना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। ये जब तरीके से हम ददाति प्रतिग्रहणा की व्यवहार रखेंगे, प्रीति बढ़ेगी, प्रीति से आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से आपको कृपा मिलेगी। भगवान के वो जो दामोदर लीला हमें ध्यान है कि दामोदर लीला में क्या था, दो उंगली, हम भगवान को मानने जा रहे हैं यशोदा माता, लेकिन दो उंगली हमेशा कम पड़ रही, आपका प्रयास और भगवान की कृपा, जब तक वो मिलती नहीं है तब तक आप भगवान को बांध नहीं सकते, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। हमें ये सीखना है कि ये ऐसे आश्चर्य कार्य कर सके तो हम भी कर सकेंगे अगर ये प्रकार से हम व्यवहार रखें भक्तों के बीच में, तब जाके हम इस मिशन को प्रभुपाद की जो हमारी ये संस्था है उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत ब्रह्मंडे ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, मतलब बहुत जन्मों के बाद हमें यह संघ मिला है, इसे कभी भी हल्का मत समझो। ध्रुव महाराज इतनी बड़ी तपस्या की, उनको था कि मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राज्य मिलना चाहिए। 6 महीने तक तपस्या की, भगवान के दर्शन हो गए, फिर जब असली ज्ञान हुआ तो बोलते अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, मैं राजा से कांच मांगने जा रहा हूं। क्या मांगने जा रहा हूं? कांच के टुकड़े। हां, फिर भगवान बोले आपको मिलना पड़ेगा, तो बोला अगर मुझे आपको देना है तो मुझे भक्तों की सेवा, भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों का संग, ये दो मुझे। तो ये जो हमें संग मिला है उसे कभी भी हल्का मत समझो। और जो हमारी प्रीति वर्धनम की वस्तु है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्यम पृच्छति भुंजते भोजते चेव, ये विधि को बढ़ाओ, तब जाके हम कृपा के पात्र हो गए। किसी में भी दोष मत देखो मेहरबानी करके। हर जीव का कृष्ण से एक अलग संबंध है, और हर प्रभुपाद हमेशा बताते ये हॉस्पिटल में हम है, ये है हमारे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में सब पेशेंट है। ये मत बोलो हॉस्पिटल में जाएंगे एक पेशेंट जिसको पेट का बीमारी हो, गैस निकलता है, तो दूसरा अपना पैर लग के ऊपर लगा है, उसको नहीं बोल सकता है कि भाई साहब आप क्यों गैस छोड़ रहे हो। एक कुछ सर का बीमारी है, किसी को दूसरा बीमारी है, तीसरी को तीसरा बीमारी, सबको कुछ ना कुछ बीमारी है, लेकिन हॉस्पिटल में आए एक दूसरे को सहन करो, क्या करो, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदाहरी। ये सूत्र बांध के उसको पी जाना है हमें, तब जाके हम प्रभुपाद गुरु महाराज वैष्णव से आगे जाएंगे। तो इस श्लोक में मूल तात्पर्य यही है कि ये आश्चर्य कार्य जड़ भरत महाराज क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के असीम चरणों को, यहां पे जो लिखा गया है कि भगवान के चरणों प्राप्ति से जीवन में और कुछ भी बाकी करने का कुछ भी रह नहीं जाता है। तो हमारे ये बहुत जन्मों की तपस्या है, बहुत जन्मों का पुण्य है कि हम प्रभुपाद के इस मिशन में जुड़े हैं, इसे हाथ से मत जाने दो। वैष्णव अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध, इससे बचना है, और आगे गति ही है हमारी। और जहां तक नाम की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, भगवान जिस दिन आप लायक हो जाएंगे भगवान आपको दे देगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक और बात थी, जैसे युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने बहुत यज्ञ किए, किसने, भरत महाराज ने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को वो 100 यज्ञ का फल सिर्फ भगवान ने 3 यज्ञ करवा के दे दिए थे। तो भगवान छोटी चीज में भी बड़ी चीज कर सकते हैं, और बड़ी चीज को भी छोटी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कुछ कमेंट है, कृपया करके बताइए। यस प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्साहमय लेक्चर का। तो आपने बताया कि ये एक हॉस्पिटल है, और यहाँ पे हम सब मरीज हैं जो ठीक होने आए हैं, और क्योंकि सब पेशेंट हैं, सब मरीज हैं, तो सब में कुछ ना कुछ बीमारी है। लेकिन होता क्या है कि ये माया का छलावा ऐसा है कि है तो सब पेशेंट, लेकिन कभी कभी पेशेंट उठ जाता है वहां से और डॉक्टर का कोट पहन के राउंड पे निकल जाता है और सब पेशेंट को बताता है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, और अपना प्रॉब्लम उसको दिखता नहीं। तो ये माया का जो छलावा है,
हाँ,
जिससे हम अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं, वो कैसे बचे उससे?
देखो, ये जो हमारा ईगो है ना, ये सबसे बड़ा, ये जो लास्ट वस्तु जो जाती है वो ईगो जाती है। ईगो को जब तक हमारा क्रश नहीं होगा ये जाने वाले नहीं। और ये ईगो क्यों रहता है, ये ईगो पहले से प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि यहां का स्वामी कौन है, यहां का स्वामी, मंदिर का स्वामी राधा रास बिहारी कौन है, और उसको दिमाग है कि नहीं है। कितने जन मानते हैं उनको दिमाग नहीं है? अच्छा, दिमाग है कितने जन मानते हैं, हाथ ऊपर करो, पक्का मानते हैं ना कि वो बॉस है यहां पे, कि और कोई है बॉस? हाँ, आपको को बॉस नहीं बनाया है, आपको दास बनाया है। क्या बनाया है? और जब हम उनके शरण में हैं तो उनको दिखता है कि नहीं दिखता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है इस हॉस्पिटल में या इस मंदिर में, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है? क्या इधर से उनको बाहर दिखता नहीं है, इधर ऑफिस में या उधर आश्रम में कुछ दिखता नहीं है क्या उनको? ऐसा कुछ है क्या? है, सब जगह दिखता है, मगर हमें नहीं समझ में आता है कि उनको नहीं दिखता है। और जब हम में वो समझ नहीं आती कि उनको नहीं दिखता है, तब हमको लगता है कि मुझे दिखता है, उनको नहीं दिखता है। मुझ में ज्यादा दिमाग है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं है। किसमें? हां, इसलिए मेरी बात को सुनना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। अगर आपको कोई तकलीफ है, इधर आके रो। किधर? अगर इधर सुनवाई नहीं है तो शांति से बैठ जाओ। क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं है। भगवान बताते हैं कौन मेरा प्रिय है। समाह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतो उष्णो सुख दुखेशु समाह संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्ट येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। उसके पहले के 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हाँ, 13वें श्लोक में, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्मम निरअहंकार सम दुख सुख शमी। भगवान का हक बनता है कि आपको सुख भी देवे दुख भी देवे। माया का मान भी देगा अपमान भी देगा। अगर हम बोलते हैं कि हमको गोलोक जाना है, तो गोलोक जाने के लिए 99.9% वाला आदमी भी नहीं जाएगा, कट ऑफ खाली 100% है। उधर कितना है? अगर आपका 99.99% भी शुद्धि हो गया और 0.1 भी रह गया, आप गोलोक नहीं जा सकते हो। मेरा तो अभी तक माइनस में चल रहा है, क्योंकि मैंने सोच के रखा हूं कि अभी इस जन्म में मेरे को थोड़ा दिमाग आया है कि मैं मरने वाला तो नहीं हूं, आत्मा रूप में मैं मरने वाला नहीं हूं, और मेरा और भगवान का जो संबंध है शाश्वत है, इटर्नल है। ये 10-20-50 साल खाली हमारी ट्रायल चलेगी। क्या चलेगी? अभी तो करोड़ों वर्ष बाकी है भगवान की सेवा करने के लिए। कितने? करोड़ों करोड़ों वर्ष। यहां खाली नेट प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो? थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लो 20-25-50 साल में, फिर बाकी तो तुम्हारी प्रगति है। समह मान अपमान, क्योंकि भगवान का ये हक बनता है कि आपको मान भी देंगे अपमान भी देंगे, सुख भी देंगे दुख भी देंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं कौन मेरा प्रिय है जो इसमें सम है। और उस सम कब रहेगा? जब राधा रास बिहारी पे पूरा दृढ़ विश्वास होगा, हा है ये, और ये रक्षा करते हैं, अवश्य रक्ष भी वो कृष्णा। इस भाव से जब हम इनके शरण में रहेंगे आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन आप सोचोगे ये तो खाली मूर्ति है और मैं मेरी रक्षा करूंगा, तो भगवान बोलते ठीक है भाई, हॉस्पिटल में तू अपना इलाज कर भाई, गोलियां लेगा और दूसरी गोली लेगा, खुद खुद भी बीमार दूसरे को भी बीमार, बीमारी बढ़ेगी, क्या होगी बीमारी, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है। हम सब क्या है, थोड़े कम पेशेंट है, कोई ज्यादा पेशेंट है। तो इस भाव से अगर हमें बचना है तो हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मंदिर में ये बॉस है, मैं बॉस, ये जितने भी बाकी और है सब क्या है, उनके द्वारा क्या चलाया जा रहा है, कठपुतली है। वो भले मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट हो या यहां पे जो झाड़ू मारने वाला हो, सब इनकी दृष्टि में चल रहे हैं। हम निमित्त मात्रे सव्यसाची, क्या है हम, और हमारा जो रोल है हम अपना रोल करके बाजू में हटो, वरिष्ठों से आज्ञा लो, ये हमारा रोल है, हमारा काम करो, तब जाके इस भाव से आप अपने आप को बचाए। पहली बात तो अपने आप को ब्रह्मचारी लोग को बिजी रहना चाहिए, और ब्रह्मचारी के पास जो मिशन रहना चाहिए कि मुझे सन्यास लेना है। जब उनके पास सन्यास का मिशन रहेगा और बिजी रहेंगे तब जाके उनकी प्रगति होगी। हमेशा एक हायर गोल रखना पड़ेगा, और माया किसी को नहीं छोड़ने वाली है, माया इधर भी टेस्ट करेगी उधर भी टेस्ट करेगी बाहर, और माया यहां पे तो ज्यादा टेस्ट करेगी आपको, क्योंकि आपको जाना है किधर, गोलोक। तो उनका काम है कि इसको ये पीतल है कि सोना है, क्या करेंगे, इसको तपाओ, पीतल है तो काला पड़ जाएगा, सोना है तो निखर के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हर गृहस्थ में भी प्रॉब्लम है, अब गृहस्थ का भी रामायण सुनोगे महाभारत सुनोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। अभी मैं घर से आ रहा था, मैं बोला आज क्लास है, माताजी ने बोला स्ट्रिक्टली पहला इधर का घर का सब काम जगन्नाथ की सेवा कंप्लीट करके जाओ, बाद में क्लास देने जाओ, हम लोग हमारा किचन संभालेंगे। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हर वस्तु में हमको कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम 100 की स्पीड में उधर दूसरा 20 की स्पीड में चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा भाई। और जो रेस में रहता है ना, जिसके ज्यादा बोझा रहता है ना वो ज्यादा कम चलता है, गृहस्थों पर ज्यादा बोझा रहता है। आप में तो कुछ ज्यादा बोझा नहीं है, इसीलिए इसमें से हम निकल सकते हैं, एक ही कि उनकी दृष्टि से उनके शरण में उनकी सेवा में रहे। और डीटी सेवा करना है आपको भी मैं बताता हूं, आप जुड़ो कैसे भी करके अंदर, थोड़े सेवा विग्रह की होनी चाहिए, तब जाके हमारी रक्षा होती। और अपने कार्य से कार्य मतलब रखो, बाकी अपना जो कार्य है उस पर अपन ध्यान देना, बाकी कृष्ण को मंदिर कैसे चलाना उसको ज्यादा मालूम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। और किसी को कोई कमेंट देना है तो दे सकते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ लोग है। यस प्रभु जी माइक दो।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस,
जब दुष्यंत राजा शिकार में गए थे जंगल में,
हाँ,
उस समय कन्नौ ऋषि कन्मूल फूल लाने के लिए बाहर गए हुए थे और शकुंतला आश्रम में अकेली थी, तब ऋषि आने दुष्यंत आने पर उन्होंने उनका आदर आतिथ्य किया, उनको खिलाया पिलाया, तो वो उनसे आसक्त हुए देखने से। तब उन्होंने कहा कि मेरा मन जो है अधर्म में प्रवृत्त कभी हो नहीं सकता है 100%। तो पूछा, आप निश्चित रूप से ऋषि की पुत्री नहीं हो सकती है या ब्राह्मण की बेटी नहीं हो सकती है, क्या मैं क्षत्रिय हूं। तब शकुंतला ने उनको बताया कनव ऋषि ने जो उनको बताया था उनके जन्म के बारे में बताया कि जो उनके जन्म के इतिहास बताया, संक्षेप में बोल रहा हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपसे कोई व्यवहार करने के लिए पिता घर में नहीं है, अभी कनव ऋषि मेरे पिता है तो उनके अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं संभव, तो लड़के जो है माता पिता के निर्देशन में रहती है। फिर राजा बोले हम चलते हैं, फिर बाद में कभी भेंट होगी। तब उसने विचार किया कि राजा के पर चले जाने पर शायद हो सकता है समय नहीं मिलेगा, आ नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने गंधर्व विधि से पाणि ग्रहण किया दोनों के इच्छा से, और उनसे समागम हुआ, उसे बालक हुआ, बाद में समागम हुआ और बालक रहा। और इसके बाद में राजा बोले थे कि मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, कुछ समय के बाद आपको लेने के लिए आएगा, फिर वो आया ही नहीं। तो ऋषि को जब पता चला तो ऋषि खुश हुए कि अच्छा व्यवहार हुआ है, और बेटी के प्रशंसा की कि अच्छा है, हमें तो इससे मुक्त होना ही था, अच्छा हो गया, एक कार्य तुम करके दिया। उसके बाद में कनौर से राजा के दरबार में गए लेकर शकुंतला को, तो उस समय उन्होंने इनकार कर दिया, बोला मैं आपको नहीं जानता है और ये बेटे को नहीं जानता है, कुछ नहीं समझता है, इसलिए है कि लोग का अपवाद से वो डर रहे थे, सोचा कि हम बोलेगा मेरा बेटा है पत्नी है तो लोग उसको गुस्सा करेंगे कि बिना बताए कहाँ से बेटा लेकर आए हैं, शादी हुआ नहीं सबके सामने, है ना। तब जब उनका आपस में चल रहा था वो परीक्षा ले रहे थे शकुंतला के, फिर क्या हुआ एक मिनट में खत्म करूंगा, उन्होंने तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बोला कि आपका यह बेटा है और आपकी धर्म पत्नी है, आप इसे स्वीकार करो। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है प्रभु जी?
इससे मालूम पड़ता है कि जो कुछ होता है प्रभु की योजना के अंतर्गत होता है,
धर्म के कार्य में भगवान हमेशा रक्षा करते हैं।
हाँ हाँ यस यस,
भगवान बताते हैं कि रसो हम अपसु कौनते प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेद शब्द के, ये जो खे है मैं हूं। तो आकाशवाणी जो हुई वो भगवान करवाए, और वो बताना चाहते कि भाई जब भी ये धर्म है, और यही बात हुई थी कुंती माता के समय, कुंती माता के समय भी जब वो लेके आई थी पुत्र को, तो व्यासदेव ने आना, भगवान ने व्यासदेव को भेजा था और तब जाके उनको स्वीकार किया गया था। तो जब भी हम धर्म पे रहते हैं, जब भी हम भक्ति के रहेंगे, कृष्ण अवश्य रक्षा करता है। और कोई पॉइंट? कितना टाइम है प्रभु?
प्रभु प्रभु जी जब हम अस्पताल में रहते हैं
हाँ।
तो एक समस्या और आती है, एक तो उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर समझने लगते हैं दूसरी आती है कि हम पड़ोस में जो है पेशेंट उसको ब्रेन में ट्यूमर है
हाँ।
हमें तो हाथ में ही फ्रैक्चर है
हाँ।
तो हमें लगता है कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है
हाँ।
तो पंखा कब चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, खिड़की कब खुलेगी
हाँ।
ये तो हमें बताना चाहिए
हाँ।
तो इसमें क्लेश हो जाता है।
ठीक हाँ। है प्रभु जी, यही है कि जो व्यवहार है वो तभी होगा जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। हम जैसे बोले डॉक्टर खुद बन जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। यस प्रभु जी
हरे कृष्ण,
कृपया करके आशीर्वाद दीजिए क्योंकि हम आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे।
नहीं नहीं,
आपको ही देना पड़ेगा आपके प्रश्न।
दे पाएंगे आप? प्रश्न ये है
हाँ,
जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं और गुरु भी समझते हैं, तो उस ज्ञानी को, उस गुरु को माया ज्यादा पछाड़ती है।
माया?
हाँ, माया ज्यादा पछाड़ती है।
ज्यादा पछाड़ती है
जी,
बिल्कुल।
क्यों?
हाँ?
क्यों?
कोई इसका उत्तर देना पाएगा? प्रश्न फिर पूछिए प्रभु जी, कि जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझता है, ज्यादा गुरु समझता है, माया उसको ज्यादा पछाड़ती है, ये पीछे। हाँ बोलिए प्रभु जी, कुछ कमेंट? हाँ धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ज्ञानी का मतलब अमानित्वम अदम्भित्वम, तो ज्ञान, सही ज्ञान शुरू होता है नम्रता से, और ज्ञानी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, तो ये ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है। क्योंकि जो छह ऐश्वर्य है उसमें ज्ञान है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भगवान ही है। हमारे अंदर जो भी अंशात्मक ज्ञान है वो कृष्ण की कृपा से ही है। और ईशोपनिषद में प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसा एक सांप होता है वो भयावह होता ही है, लेकिन मनी वाला सांप ज्यादा खतरनाक होता है, नागमनी। तो उसी तरह से एक सामान्य कर्मी व्यक्ति का संग खतरनाक होता ही है, लेकिन ज्ञानवान कर्मी जो होता है, जिसको ज्ञान भी है थोड़ा सा अध्यात्म का और वो अहंकारी है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उदाहरण देते हैं कि जैसा कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, तो वैसे भी वो डूब रहा है, लेकिन उसके सिर के ऊपर अगर कुछ भार है तो वो जल्दी डूबेगा। जैसे कि तुकाराम महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र के संत, वेदांचा तो अर्थ अम्मा सची ठावा अन्यान्य वहावा भर माथा। इसका मतलब है कि वेदों का अर्थ केवल हमको ही मालूम है कि भगवान को शरण जाना, लेकिन बाकी लोग जो ज्ञानी है तथाकथित वो बोझ ही ढो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो हमाल है, तुकाराम महाराज के शब्दों में। तो ज्ञानी मतलब नम्र होना चाहिए, अहंकार आया तो ज्ञानी है ही नहीं, भगवद गीता के माध्यम से। हरे कृष्ण।
मुझे इसमें थोड़ा ऐड करना है कि जैसे प्रभु जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं इस्कॉन में इतने साल से है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो वरिष्ठ पोजीशन में रहते हैं और बोलते हैं कि माया उनको ज्यादा अटैक करती है। सबसे पहले तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि यहां पे जो भी लक्ष्मी आती है ना मंदिर में, वो कर्मी लोग की आती है। किसकी आती है?
कर्मी।
ये कोई शुद्ध भक्तों की आती, मतलब जो भी डोनेशन आता है, और डोनेशन जब आता है तो आप उसके कर्म भी आते हैं उसके साथ। क्या आते हैं?
कर्म आते हैं,
उसके कर्म भी आते हैं। और अगर आपकी शुद्धता बराबर नहीं है, आपकी साधना बराबर नहीं है, आपकी अंदर की जो प्योरिटी बराबर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन पे, वो अन्न जो आता है, वो लक्ष्मी जो आती है, वो कहीं ना कहीं आप पर असर करेगी, क्योंकि आप उसको बराबर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो एक कारण होता है मन विचलित होना। दूसरा कारण, जाने अनजाने में हमसे जब कोई अपराध हो जाता है, चाहे वो वैष्णव अपराध होवे, वो नाम अपराध होवे या धाम अपराध होवे, तब भी कहते हैं कि कष्ट क्यों आता है भक्त को, पूछा गया था, तीन कारण से बताया गया, ये माया क्यों अटैक करती, तो उसको बोला एक तो प्रारब्ध से जो हमारे कष्ट है उसको झेलना पड़ता है, दूसरा जब हम कोई अपराध करते हैं किसी ना किसी कारण, तब माया और ज्यादा क्या करती है, अटैक करती है। तो ये कुछ कारण हो जाते हैं कि माया हमारी परीक्षा ज्यादा लेती है। और ये जैसे प्रभु जी बताए, जो सोचता है कि मैं अधिक ज्ञानी हूं या गुरु हूं, तो अभी तक वो वास्तव में ज्ञान, क्योंकि दास दासानु दास, चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि मेरा पोजीशन क्या है। वो जब वो एक श्लोक का वर्णन दिए चैतन्य महाप्रभु, कौन सा, आत्मा आत्माराम का श्लोक का, कितने तो 64 अर्थ बता दिए थे, लेकिन जब फिर सनातन गोस्वामी के पास गए, यू नो, मतलब दूसरी बार बताया, तो बोले उस टाइम मेरा पागल की तरह मैं बोल दिया, मेरे को अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे संग से है सनातन, तुम्हारे एसोसिएशन से मुझे कुछ याद आ जाएगा। यस प्रभु जी,
आपने बताया कि कर्म फल लगता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्तों से लक्ष्मी लेकर नहीं आते हैं।
नहीं नहीं, शुद्ध भक्ति से भी आता है लेकिन कर्मी से भी आता है,
कर्मी से
ऐसा नहीं,
मोस्टली कर्मी से ही आता है।
हाँ हाँ,
तो कर्म फल कर्मी से तो हम पैसा लाते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते, भगवान के लिए लाते हैं, मंदिर के लिए आते हो, तो कर्म फल फिर भगवान को भोगना पड़ेगा ना, भक्त के भोगना।
नहीं नहीं, कर्म फल भगवान के, जो भी आज उसका अन्न खा रहे हम लोग, क्या खा रहे आज, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रोज आज किसी ना किसी का वो होता है, क्या होता है, किसका जन्म का हो रहा है, किसका मरण का हो रहा है, किसका इसका हो रहा है, हा? तो वो कर्म वो आपको जा रहा है, आपको पचाना पड़ेगा वो कर्म, अगर नहीं पचा पाओगे तो दिमाग खराब होने वाला है।
तो नहीं, तो ये जितने चीज हो रहा है वो तो भगवान को अर्पित किया जाता है, तो
नहीं, अर्पित किया जाता है,
तो अर्पित का, किया था, भगवान
उसका भोग, भोग भी हम तो कर रहे हैं,
नहीं तो भोग कर रहे हैं, तो उनको अर्पित कर करना, तो सारा तो भोग, सारा तो जितने कर्म फल उनके ऊपर चला जाएगा और उनका प्रसाद हम खाते हैं।
हाँ,
तो कर्म फल से मुक्त हो गया वो, तो
इसीलिए हमें अगर भगवान को केंद्र में रख के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आ रहा है हमारा, देखो अन्न एक प्रकार है, वैष्णव अपराध दूसरा कारण है कि माया परीक्षा लेती है, तो बहुत सारे कारण, देखो आज किसी को रोग है तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, एक ही कारण के कारण नहीं होता है, बहुत जन्मों के हमारे पूर्व कर्म के ही रहते हैं जो उसको भगवान शुद्धि करना चाह रहा है। जैसे मैं बताया ना कि हम अगर बोलते कि हम भक्त है, मैं बोलता हूं मैं सोना हूं, तो माया का हक बनता है कि भाई ये वस्तु में सोना बना है कि अभी भी पीतल है, इसको तपा के देखो क्या करो मैं, और मैं तो आज तक फेल हो गया हूं, पक्का फेल हुआ हूं, लेकिन एक आशा है कि ये जन्म में फेल होते होते थोड़ा आदत गिर जाएगी, दूसरे जन्म में कुछ हो जाएगा हमारा भला है। हाँ, खाली इतना है आस कि वैष्णव के शरण में रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे, आशीर्वाद रहेगा, हमारा भला हो जाएगा। बोलते हैं कि जो वैष्णव कृपा रहती है तो बोलते हैं कि लंगड़ा भी चलने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, हाँ? और अंधा भी देखने लगता है। तो ये एक कारण हो सकते, बहुत सारे दूसरे भी कारण है। हाँ बोलिए
प्रभु। जब प्रभुपाद जी विदेशों में, इंडिया में उस समय कुछ नहीं था, विदेशों हाँ। में प्रचार कर रहे थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था।
हाँ।
तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन से काफी पैसे आते, दूसरा कोई स्रोत नहीं था, तो चारों ओर हला हो गया, विदेशों में भी हला हो गया कि ये संस्था जो है पैसा कमाने की संस्था है, और लेकिन उस क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जलन भी लोगों को जलन होने लगा, तो उस समय क्योंकि बहुत सारे प्रचार भी होता था और साथ में प्रभुपाद जी वो पैसे का उपयोग जो है मंदिर बनाने में करते थे, तो क्वेश्चन किया गया, यहां तक के कोर्ट केस भी हुआ, जब तो प्रभुपाद जी उसका जवाब ये दिए थे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन मुझे मंदिर बनाना है, बुक प्रिंट करना है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए हम ये सब कर्म कर रहे हैं।
बिल्कुल,
जिस दिन हमारा ये कर्म हो जाए, ये सब पूरा हो जाएगा, हमको पैसे की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल सही बात है।
तो वैसे ही आज राधा गोविंद महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, वो 1987 में किसी के घर पे हम लोग गए थे, पवई में, पवई का जो लैंड है पूरा हिरानंदानी का उसी का था, तो राधा गोविंद महाराज उस समय बुक में बुक्स डिविजन का गीता जयंती का समय था, तो उस समय अपने प्रवचन में ये बात बोले थे कि धर्म के बढ़ावा देने में धनियों का बहुत हाथ है, क्योंकि वो हमें लक्ष्मी देते हैं तो उस लक्ष्मी से हम मंदिर बनाते हैं और उस लक्ष्मी से हम बुक प्रिंट करते हैं और लोगों में बांटते हैं, जिनके उनका भी सहयोग है ये धर्म के बढ़ावा देने में और लोगों को भक्त बनाने में।
बिल्कुल सही बात,
कमेंट है हमारा।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रभु जी, इसमें कहां में दो राय है। हाँ तमाल प्रभु, आपका उत्तर माइक उनको
ऐड करना है कुछ,
ये समाप्त कर,
एक मिनट
क्योंकि अभी प्रसाद का भी समय,
एक मिनट बस।
हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा। कभी कभी बोलने में भूल हो जाता है। बोलने में भूल होता है, भूल
भूल।
हाँ, जैसे कोई भी भक्त या वक्ता जब धर्म पत्नी के विषय में बोले, उनको यह बोलना पड़ेगा कि बच्चे की माता जी या लड़के की माता जी या लड़की की माता जी, इस तरह से
यस यस
पत्नी को माता के रूप में संबोधन करने पर ऐसा भास हो जाता है।
बिल्कुल।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसा बोला। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ कंक्लूजन आप दे दीजिए, अभी कंक्लूजन आप ही दे दीजिए उत्तर। हाँ उत्तर दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। हाँ प्रभु जी, इसका कारण क्या है? हाँ, आप बताइए।
कृष्ण भजन प्रभु ने व्याख्या किया।
हाँ,
मिथ्या ज्ञानी। तो मेरा प्रश्न ये है,
हाँ,
कि क्या बृहस्पति जी मिथ्या ज्ञानी है? वेद व्यास जी का शिष्य जो जैमिनी है, क्या वो मिथ्या ज्ञानी है? क्या वो भगवान के बारे में नहीं जानता था? उन लोगों को माया ने पछाड़ दिया, क्यों वो मिथ्या ज्ञानी है? एक वास्तविक ज्ञानी होते हैं, एक मिथ्या ज्ञानी होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या बृहस्पति जी मिथ्या ज्ञानी है? और मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रोवा जो श्लोक वेद व्यास जी लिखे हैं, आज यमिनी जानता है, कहते कि नहीं आप ऐसा लिखे, वो परीक्षा लिए, परीक्षा में वो फेल हो गया, तो क्या वो मिथ्या ज्ञानी है? मेरा कहने का मतलब है, जिस गुरु की हम नित्य, जिसकी कथा हम नित्य सुनते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, और वेद व्यास जी जिन्होंने वेद की रचना किया, उनके शिष्यों की बात कही जा रही है, जिनको माया पछाड़ देती है, तो क्या वे मिथ्या गुरु हैं? मेरा प्रश्न ये है।
नहीं, आपका आपका अभी आप ही उत्तर दे दीजिए, क्या है?
नहीं, हाथ उठाया है ना, उनकी व्याख्या को मैं बोल रहा
हूं। नहीं, मेरा मेरा मैं अभी यहाँ पे थोड़ा समाप्त करना चाहता हूँ इस विषय को। चर्चा अच्छी चल रही है कि ठीक है, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बोलिए प्रभु जी।
बृहस्पति जी जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आए, वही बृहस्पति थे, जब तक वो चैतन्य महाप्रभु को शरणागत नहीं हुए, उनका ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं था, वो आधा अधूरा ज्ञान था। तो वो जो भी ज्ञान हमें कृष्ण के चरणों में शरणागत होने में मदद करता है, वो परिपूर्ण ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान हमें कृष्ण के चरणों में शरणागत होने तक नहीं लाता, वो अधूरा ज्ञान है। और इसीलिए माया देवी वो अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञानी थे, लेकिन जब तक वो चैतन्य महाप्रभु को शरणागत नहीं हुए, तब तक उनका ज्ञान पूरा नहीं हुआ। और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने उनको षड्भुज दर्शन दिया जब वो शरणागत हुए तब। तो ज्ञान की परिपूर्णता कृष्ण को शरणागत होने में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो ज्ञानी है, जो वासुदेव का सर्वस्व समझता है, वो सही ज्ञानी है। लेकिन जो वासुदेव के पास नहीं आता, रास बिहारी के पास नहीं आता शरणागत होने के लिए, वो अधूरा ज्ञानी है। हरे कृष्णा। कुछ और आपका ज्ञान रहेगा तो बोल सकते हैं।
प्रभु समाप्त कर दीजिए। हाँ बोलिए प्रभु।
हरे कृष्ण। हम सब इस्कॉन में रहते हैं और परंपरा से युक्त हैं, और बड़े बड़े आचार्यों के सब प्रतिनिधि हैं, गुरु बनकर के प्रचार करते हैं, उनको तो ज्ञान है कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, फिर भी माया पछाड़ देती है। मेरा कहने का भाव है।
नहीं नहीं ठीक है, ये परिणाम है, इसलिए हम यहाँ पे। हाँ।
मेरा जो प्रश्न है, जो जानते हैं,
हाँ,
हो सकता है और नहीं जानते हूं, लेकिन इतना तो जानकारी है कि भगवान कृष्ण भगवान है, इतना तो जानकारी है, लेकिन फिर भी माया उनको पछाड़ देती है। इस्कॉन में आप देख रहे हैं, इस्कॉन की बात मैं बोल रहा हूं और भी आचार्यों की बात मैं बोल रहा हूं, उनको माया तो पछाड़ देती है, तो क्या वो भगवान को नहीं जानते थे?
अपराध के लिए बोलते हैं कि अपराध एक कारण होता है प्रभु।
थैंक यू।
अपराध एक कारण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आपका धन्यवाद, आप मुझे आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़े बस। श्री प्रभुपाद की।